arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि।
दक्षिण कोसल की स्थिति एवं प्रमुख राजवंश।
चौहान या चाहमान राजपूतों का ही एक कुल था। राजपूताना के आबू पर्वत स्थित एक यज्ञ कुंड से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनकी कई शाखाएं थी। एक शाखा महिष्मती नर्मदा तट पर राज्य करती थी, किंतु सांभर या शाकंभरी के चौहान सबसे प्रसिद्ध थे। इनकी राजधानी अजमेर थी। प्रारंभिक चौहान प्रतिहारों के अधीन थे। अब इनकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। हम्मीर काव्य के अनुसार पुष्कर क्षेत्र में यज्ञ की रक्षा के लिए सूर्य के संयोग से एक वीर की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम चाहमान रखा गया। आबू पर्वत में वशिष्ठ के यज्ञ के समय जिन वीरों की उत्पत्ति हुई, उनमें चौहान एक थे। अपनी वीरता के कारण ही उन्होंने 8वीं शताब्दी में मुसलमानों के राज्य को सिंधु से आगे बढ़ने से रोका था। 11वीं शताब्दी में अजय देव ने अजमेर नगर की नींव रखी। इस वंश में अनेक राजा हुए, किंतु दो राजाओं के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रथम विग्रहराज और द्वितीय पृथ्वीराज चौहान। और अब चौहानों का उत्कर्ष। पहला विग्रहराज। इस वंश का प्रसिद्ध शासक विग्रहराज था, जिसके राज्यकाल में चौहानों का राज्य और भी विस्तृत तथा शक्तिशाली हो गया। इसने संभवतः हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक के भागों को जीता। इसके अतिरिक्त 1163 में दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ के अनुसार विग्रहराज ने तोमर राजपूतों से दिल्ली को छीनकर उस पर अधिकार कर लिया। उसने तुर्कों से युद्ध किया। इस प्रकार उसने एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी। इसके अतिरिक्त विग्रहराज एक प्रसिद्ध कवि और विद्या प्रेमी भी था। उसने स्वयं कई प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखे। विग्रहराज एक सफल सैनिक नेता होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली कवि तथा विद्वान भी था। दूसरा सोमेश्वर। विग्रहराज की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई सोमेश्वर सन 1169 ईस्वी के लगभग दिल्ली की राजगद्दी का स्वामी बना। सोमेश्वर के अधीन अजमेर और दिल्ली दोनों राज्य इकट्ठे हो गए। तीसरा पृथ्वीराज चौहान। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान ने भारत के इतिहास में मुसलमानों के आक्रमण को रोकने में बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया। वह बड़ा वीर योद्धा था। पृथ्वीराज की सफलताओं का वर्णन चंद बरदाई की प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासों में किया गया है। चंद बरदाई ने यह पुस्तक अपने स्वामी की प्रशंसा में तत्कालीन हिंदी भाषा में लिखा है। अपनी विजयों के कारण सारे उत्तरी भारत पर पृथ्वीराज ने अपना प्रभाव कर लिया था। पृथ्वीराज की इसी वीरता के कारण ही कन्नौज के राजा की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी थी। जयचंद ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस बात का समाचार पाकर पृथ्वीराज संयोगिता को स्वयंवर से भगा ले गया। इस घटना से जयचंद सदा के लिए पृथ्वीराज का घोर शत्रु बन गया और अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसी अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। इसके पश्चात पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और वहां चंदेल शासकों को पराजित करके उनसे महोबा और कई अन्य प्रसिद्ध स्थान छीन लिए। फिर उसने गुजरात के चालुक्य के साथ भी सफलतापूर्वक युद्ध किया। इस प्रकार सांभर, अजमेर, देहली और बुंदेलखंड पर राज्य करने के कारण वह उत्तरी भारत का सबसे बड़ा राजपूत राजा माना जाने लगा। पृथ्वीराज की सबसे बड़ी सफलता मुसलमानों के आक्रमणों को रोकना था। और अब जानकारी तराइन के युद्धों की। प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में दिल्ली पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। इस अवसर पर पृथ्वीराज चौहान ने शत्रु का बड़ी वीरता से सामना किया। उसने कई हिंदू राजाओं का एक संगठन बनाया। तराइन के मैदान में घोर युद्ध हुआ। मुसलमानों ने राजपूतों को पराजित करने का प्रत्येक प्रयत्न किया, परंतु वे असफल रहे। राजपूत सेनाओं ने मुसलमानों को चारों ओर से घेर लिया, परंतु वे जीवन रक्षा के लिए भाग खड़े हुए। मोहम्मद गौरी घायल होकर भाग गया। इस वजह से पृथ्वीराज का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया। अरब तराइन का द्वितीय युद्ध। सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने फिर भारत पर आक्रमण किया। इस बार हिंदू मुसलमानों का सामना न कर सके। पृथ्वीराज अंतिम समय तक लड़ता रहा। कई इतिहासकारों के अनुसार पराजित होने पर वह पकड़ा गया और बाद में उसका वध कर दिया गया। इस प्रकार चौहान वंश का अंत हो गया और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। वह वास्तव में एक वीर योद्धा और अद्वितीय सेनापति था। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अर्थात राजपूत युग में वही एक ऐसा वीर था जिसने न केवल अन्य राज्यों को ही विजय किया अपितु विदेशियों को भी पराजित किया। वास्तव में वह राजपूत राजाओं में सबसे बड़ा राजा था। डॉक्टर वी ए स्मिथ के अनुसार वह उत्तरी भारत का आज के दिन तक सर्वाधिक लोकप्रिय नायक है। और अब मूल्यांकन। भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान प्राचीन भारत का अंतिम शक्तिशाली सम्राट था। वह वीर योद्धा था, साहसी था, किंतु उसमें कूटनीतिज्ञता का अभाव था। परिणामतः द्वितीय तराइन युद्ध में वह गौरी के वाकजाल में फंस गया और उसका पतन हुआ। पृथ्वीराज विद्वानों का आदर करता था। बागेश्वर, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति उसके दरबार में थे। चंदबरदाई रचित पृथ्वीराज रासौ और जयानक रचित पृथ्वीराज विजय ने उसे अमर बना दिया। सत्यनारायण दुबे के अनुसार पृथ्वीराज की हार भारतीय इतिहास की एक महान दुर्घटना है। दिल्ली का राज्य उत्तरी भारत का एक प्रकार का सिंहद्वार था। उसके जाने से उत्तरी भारत की विजय का मार्ग खुल गया। दिल्ली से हिंदू राज्य सदैव के लिए लुप्त हो गया। और अब चंदेल वंश की उत्पत्ति एवं विकास। बुंदेलखंड में 9वीं शताब्दी में इस वंश का प्रभुत्व स्थापित हुआ। खजुराहो उनकी राजधानी थी। उत्कीर्ण लेखों के अनुसार उनके पूर्वज चंद्रात्रेय उनके आदि पुरुष थे, इसलिए ये चंदेल कहलाए। स्मिथ इन्हें छतरपुर रियासत में केन नदी के तट पर मनियागढ़ के आदिवासी मानते हैं। आर बी रसेल के अनुसार यह गढ़वालों की एक शाखा थी। उनका चंदेल नाम चंदेरी से बना। वे राजपूत क्षत्रिय थे। चंदबरदाई के 36 राजाओं की नामावली में छंद या चंद नाम आया है। और अब जानें चंदेल वंश के प्रमुख शासकों को। पहला नन्नुक। राजा नन्नुक इस वंश का संस्थापक था। नन्नुक ने 831 से 844 ईस्वी तक शासन किया। नन्नुक का पुत्र वाकपति था। इसके पौत्र जयसिंह या जयशक्ति के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। ये प्रतिहारों के करद सामंत थे। हर्षदेव चंदेल के समय इनकी शक्ति बढ़ी। खजुराहो, छतरपुर, महोबा, कालंजर, राजगढ़ आदि क्षेत्र में इनका प्रभाव था। जयशक्ति का छोटा भाई विजय शक्ति था। इसके पश्चात राहेल, हर्ष, यशोवर्मा हुआ। यशोवर्मा एक शक्तिशाली शासक था। प्रतिहारों की निर्बलता से वह स्वतंत्र हो गया। इसने पाल, कौशल, कश्मीर, खस, पुरु, मिथिला, मालवा पर आक्रमण किया। कालिंजर के किले को जीता। 950 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। अगला शासक धंग। धंग यशोवर्मा के बाद गद्दी पर बैठा। उसने कन्नौज के राजा को पराजित किया। मुसलमानों से युद्ध कर सुबुक्तगीन को पराजित किया। इसकी मृत्यु 1002 ईस्वी में हुई। संगम में चिता पर या जल समाधि में इसकी मृत्यु हुई। उस समय वह 100 वर्ष का था। वह प्रतापी एवं शक्तिशाली था। अगला शासक गंड। धंग का पुत्र गंड 1002 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनबी की सेना का इसने सामना किया। 1017 में इसकी मृत्यु हुई। इसके पश्चात उसका बेटा विद्याधर गद्दी पर बैठा। महमूद से इसका संघर्ष हुआ। इसके पश्चात विजयपाल देववर्मन शासक हुए। देव का छोटा भाई कीर्तिवर्मन, उसका पुत्र सलक्षण वर्मन, जयवर्मन गद्दी पर बैठे। इसने अपने चाचा पृथ्वीवर्मन को गद्दी सौंपी। इसके पश्चात मदन वर्मन गद्दी पर बैठा। बाद में परमर्दी गद्दी पर बैठा, जो पृथ्वीराज और जयचंद का समकालीन था। 1202 में कुतुबुद्दीन ने परमर्दी पर आक्रमण किया। इस युद्ध में परमर्दी पराजित हुआ, किंतु चंदेल वंश पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। दक्षिणी बुंदेलखंड में चंदेलों का छोटा सा राज्य अकबर के शासनकाल तक बना रहा। अगला वंश है परमार। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनको अग्निकुलीन क्षत्रिय मानते हैं। हर्षोल अभिलेख में इन्हें राष्ट्रकूट बताया गया है। एक धारणा के अनुसार वशिष्ठ ने इनकी वीरता से प्रसन्न होकर इन्हें परमार की उपाधि दी। कुछ लोग इनको उज्जैन, मालवा के आसपास के निवासी मानते हैं। इनका उदय 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में नर्मदा के उत्तर में मालवा यानी प्राचीन अवंती क्षेत्र में उपेंद्र से हुआ। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। और अब परमार वंश के प्रमुख शासक। इस वंश में उपेंद्र, बैरिसिंह प्रथम, सीयक प्रथम, वाकपति प्रथम, बैरिसिंह द्वितीय, सीयक द्वितीय, वाकपति मुंज, सिंधुराज, भोज, जयसिंह, उदयादित्य, लक्ष्मण देवया, जगदेव, नरवर्मन, यशोवर्मन, जयवर्मन, विंध्यवर्मन आदि शासक हुए, जिनमें वाकपति मुंज एवं राजा भोज प्रसिद्ध हुए। वाकपति मुंज 973 से 995। मुंज इस वंश का प्रतापी शासक था। अभिलेखों में इसे उत्पल राज मुंज, अमोघ वंश आदि कहा गया है। श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ इसकी उपाधि थी। इसने कलचुरियों, गुजरात के चालुक्यों, कर्नाटक के चालुक्यों, चोलों, चौहानों, मुहिलों और हूणों से युद्ध किया था। इसकी मृत्यु 993 और 998 के मध्य हुई। मुंज का छोटा भाई सिंधुराज गद्दी पर बैठा। इसका दूसरा नाम नवसाह सांख था। इसके चरित्र की जानकारी पद्मगुप्त लिखित नवसाह सांख चरित में मिलती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर से संबंधित जानकारी भी मिलती है। ग्रंथ में उल्लेखित है कि इस युग के बस्तर के नागवंश को बज्र राज्य से बड़ा भारी खतरा था। सिंधुराज ने शोलाहार नरेश अपराजित, जो कि थाना का शासक था, के साथ नागों की सहायता की और बज्र नरेश को मौत के घाट उतार दिया। नाग कन्या शशिप्रभा से उसने विवाह किया। अगले प्रसिद्ध शासक राजा भोज। भोज अत्यधिक वीर राजा था, जिसने लगातार युद्धों से मालवा राज्य को बढ़ाया। राजा भोज भारत के प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय शासक के रूप में माने जाते हैं। उनका राज्यकाल 55 वर्ष रहा। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, जिसमें कल्याणी के चालुक्यों से युद्ध, त्रिपुरी के गंगेय देव से युद्ध, उड़ीसा के इंद्ररथ से युद्ध, लाट के राजा कीर्तिराज से युद्ध, कोकड़ के केशीदेव से युद्ध, कान्य कुब्जों से युद्ध, चौहानों, गुहिल वंशियों एवं हूणों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया। भोज के विरुद्ध चालुक्य राजा भीम प्रथम, कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण, चालुक्य सोमेश्वर, लाट नरेश त्रिलोचन चोल ने एक संघ बनाया। इन लोगों ने मालवा पर दो बार आक्रमण किया। युद्ध के मध्य 1155 ईस्वी में भोज की मृत्यु हुई। भोज युद्ध के कारण नहीं, विद्या प्रेम और विद्वत्ता के कारण प्रसिद्ध है। वह कविराज कहलाता था। धनपाल, उवट, शोमन, कवियत्री सीता उसके दरबार में थी। रानी अरुंधति भी विदुषी थीं। भोज ने चिकित्सा, ज्योतिष, गणित कोश, व्याकरण, अलंकार के कई ग्रंथ लिखे। वह परोपकारी था उसने भोजपुर नगर बसाया तथा झील बनवाई। वह शैव धर्म का अनुयायी था, महान विजेता एवं विद्वान था। राजा भोज मध्यकालीन भारत का एक महान शासक था। भोज ने धार में एक विद्यापीठ स्थापित की। वहां की शिलाओं पर व्याकरण, काव्य एवं ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को उत्कीर्ण कराया। उन्होंने शिव मंदिरों का निर्माण कराया। प्रसिद्ध परमार शासक राजा भोज ने अपनी राजधानी धार को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। और अब बात परमार वंश के अंत की। राजा भोज की मृत्यु के बाद 13वीं शताब्दी तक उसके वंशज शासन करते रहे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐनुल मुल्क ने परमार वंश के राज्य का अंत कर दिया।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।